الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان جی انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. خیر آپ شروع کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم مثالی مرد کتاب سے مثالی شاگرد کا عنوان پڑھ رہے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے سبق کی پابندی کا موضوع شروع کر لیا تھا پڑھنا پیج نمبر 198 کے اوپر. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اپنے سبق کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ مثالی شاگرد کی بات ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹ کی، تلمیز کی. تو ظاہر ہے یہاں پر جو ہے وہ بات جو ہے وہ اس سبق کی پابندی، کتابوں کے آداب، استاد کا آداب، علم کی اہمیت، ٹھیک ہے، یہی ساری باتیں جو ہیں ان کے سامنے کی جائیں گی. کیونکہ اب جو ہے وہ مثالی بیٹا یا مثالی باپ یا مثالی شوہر وغیرہ ڈسکس نہیں ہو رہے، بلکہ مثالی طالب علم، شاگرد ڈسکس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو سبق کی پابندی میں فرمایا تھا کہ اپنے سبق کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، نیز سبق میں ناغہ نہیں ہونے دینا چاہیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور مسائل پہ جب بحث ہوتی تو جو بات ثابت ہوتی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ شروع شروع میں اس کو لکھ لیا کرتے تھے. یہ ایک اہم ذمہ داری تھی جو ان کے سپرد تھی، ٹھیک ہے. یعنی سبق کو لکھنا جو ہے، نوٹ کرنا، ریکارڈ کرنا، یہ استاد جو ہے نا وہ ہر ایک کے ذمہ نہیں لگاتا، یہ خالی اسی کے ذمہ لگاتا ہے جس کے اوپر اس کو خاص اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بات کو صحیح سمجھ کر کے صحیح ریکارڈ کرے گا. نہ صرف یہ کہ یہ اس کی سمجھ جو ہے وہ ایسی امیچیور سمجھ نہیں ہے کہ یہ بات کچھ کی جا رہی ہے اور ریکارڈ جو ہے یہ کچھ اور کر دے گا، ٹھیک ہے. تو نہ اس کی عقل میں کمی ہے، اور نہ دوسری چیز کیا ہوتی ہے، دوسری چیز ہوتی ہے نیت. نہ اس کی نیت میں خلل ہے کہ کہہ تو میں کچھ رہا ہوں، اس نے بات کو تو صحیح سمجھ لیا ہے، لیکن ریکارڈ جو ہے نا یہ کچھ اور کر دے گا، ٹھیک ہے نا، میری طرف جو ہے نا وہ غلط بات منسوب کر دے گا. اس کو کہتے ہیں نیت کی خرابی. دوسری وجہ سے آپ نے پہلے بھی کبھی ساجد سے سنا ہوگا کہ انسان کے اندر نا دو ہی خرابیاں ہوتی ہیں، ایک خرابی ہوتی ہے عقل کی خرابی، اور دوسری خرابی ہوتی ہے دل کی خرابی، ٹھیک ہے. عقل کی خرابی کا مطلب یہ کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، کہا کچھ جا رہا ہے، کرتا کچھ ہے، اس قسم کا عقل کی خرابی جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہم، چھوٹی عقل ہوتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. دوسری خرابی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دل کی خرابی. دل کی خرابی کا مطلب کیا؟ نیت خراب جس کو کہتے ہیں. یعنی عقل تو اس کی صحیح کام کر رہی ہے، بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا وہ گڑبڑ کرتا ہے، جان بوجھ کر کے گڑبڑ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو عقل کی خرابی بھی بری بری چیز، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک یعنی ایک نقص ہی ہے، النسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پیدائشی طور پر کسی کا ایسا معاملہ ہو کہ اس کی جو ہے نا وہ سلو تھنکر ہو، یا جو ہے وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہو، ذہنی طور پر جو ہے وہ نارمل نہ ہو، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہماری عقل کی خرابی عمومی طور پر، جو ہم اچھے خاصے چلتے پھرتے اور ٹھیک ٹھاک انسان ہوتے ہیں نا، ہماری عقل کی خرابی جو ہے نا وہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے، آپ چلیں بتا دیں اگر، ٹھیک ہے نا. ہم پیدائشی طور پر سلو تھنکر نہیں ہیں، हम मेंटली रिटार्डेड नहीं हैं, कम से कम इंशाल्लाह जो इस क्लास के अंदर मौजूद हैं, हम साइकैट्रिक पेशेंट नहीं हैं, तो फिर अकल की खराबी कैसे होती है, ये आप बता दीजिए। अभी दिल की खराबी पर तो हम आए नहीं है, अभी तो हम सिर्फ अकल की खराबी की बात कर रहे हैं। क्या वजह बनती है फिर अकल की खराबी की? जी क्विज भी तो आखिर होता है ना इस क्लास में, थोड़ा बहुत जिद। नहीं, जिद तो फिर आपने दिल की खराबी वाली बात करती है ना, गुस्सा। गुस्सा एक अच्छा जवाब है कि गुस्सा एक रूहानी बीमारी होती है, और जब इंसान गुस्से की हालत में होता है तो उसकी अकल जो है वो सही काम नहीं कर रही होती। नफ्से अम्मारा, नहीं नफ्से अम्मारा, हाँ यानी खींचतान करके ये वजह बन सकता है अकल की खराबी का, लेकिन ये ज्यादातर दिल की खराबी में आता है। नफ्स अमारा जो है ना, ये दिल की खराबी की तरफ आप ले गए बात। जी माशाल्लाह, ये बिल्कुल सही जवाब है। डी फोकस्ड, डिस्ट्रैक्टेड, मुंतशिर होना, मुंतशिर होना, ठीक है ना, कि हम तवज्जो नहीं दे रहे होते, हम कहीं और तवज्जो दे रहे होते हैं। क्या मतलब? कि हमारे पास अल्लाह ताला ने अकल दी है, सही अकल दी है, और हम उस अकल को जहां पे इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां पे हम सही सही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात को समझ रहे होते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जहां पे करना चाहिए था वहां पे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो इसको डिस्ट्रैक्टेड, डिफोकस, या प्रायोरिटीज हमारी मेस्ड अप होती हैं, इस वजह से जो है ना वो हमारे बात समझ में नहीं आ रही होती। यानी ज्यादातर जो है वो, चूंकि ये दीन के ही एक क्लास है, तो दीन की बात समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि हमारी अकल जो है ना वो दुनिया के अंदर खूब जबरदस्त काम कर रही होती है, लेकिन दीन में हम डिफोकस होते हैं, हमारी प्रायोरिटीज होती हैं वो दीन नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना वो हमारी अकल सही काम नहीं कर रही होती, हालांकि हमारी नीयत सही होती है, हम चाहते हैं दीन पढ़ना, जब भी तो दीन की क्लास के अंदर आए हुए, वरना कोई और काम कर रहे होते, टीवी देख रहे होते, मैच देख रहे होते, और जो है वो किसी के साथ जो है वो लड़ाई कर रहे होते, या कुछ और सो रहे होते, कुछ और कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे क्यों आए हुए? कोई पकड़ करके मारपीट करके तो किसी ने नहीं बिठाया हुआ आपको, उम्मीद है कि किसी ने नहीं बिठाया होगा मारपीट करके आपको, ठीक है ना, अपनी मर्जी से ही आए हैं ना। तो नीयत तो है, नीयत सही है, नीयत अच्छी है दीन का इल्म हासिल करने की, समझ हासिल करने की, फिर बात क्यों नहीं समझ में आ रही, फिर बात क्यों नहीं समझ में आ रही, ठीक है ना। उसकी वजह यही है कि हम फोकस नहीं है, हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम मुंतशिर हैं, और हमारी प्रायोरिटीज कहीं और हैं, प्रायोरिटीज कहीं और, इस वजह से, ठीक है। अकल मगलूब होना जो है ना, वो फिर गुस्से की वजह से मगलूब हो जाती है, वो शहवत की वजह से मगलूब हो जाती है, ठीक है ना। अगरचे की नीयत आपकी अच्छी होती है, लेकिन शहवत और गुस्सा जो है वो अकल के ऊपर गालिब आ जाता है और अकल मगलूब हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी एक रीजन है कि अकल काम नहीं कर रही होती, बात समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन ज्यादा बड़ी रीजन जो होती है ना वो यकसुई का ना रहना है, ठीक है ना, यकसुई का ना रहना। हम जैसे दीन के अंदर आज सुबह भी बात हुई थी खवातीन की क्लास के अंदर भी, कि माशाल्लाह सुने चले जा रहे हैं, इधर भी सुन रहे हैं, उधर भी सुन रहे हैं, और सारे उलमाए हक को सुन रहे हैं, लेकिन भाई इतने सारे उलमाए हक को जब आप सुनेंगे तो आपका दिमाग जो है ना, ये कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है ना, कि इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, और इसके अंदर जो है ना वो आपके मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एक साथ जो है वो, यानी कितने पता नहीं गीगा हर्ट्स के ऊपर जो है वो आपके थ्रेड्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, और आपको सबकी बात समझ में आ रही है, और सबके ऊपर आप अमल भी कर लेंगे। नहीं, आप किसी काम के नहीं रहते, आप किसी काम के नहीं रहते, ठीक है ना, और खैर के क्या रहेंगे आप, यानी शर के बन जाते हैं, शर के बन जाते हैं, ठीक है। चले, आपने पुरानी बात याद है, मैं तो ये नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन अकल घास चरने गई भी होती है, ठीक है ना, चुगने के लिए गई भी होती है, तो जो हायर नॉलेज होती है उसके लिए फिर अकल में बैंडविड्थ बाकी नहीं रहती है ना, ये बैंडविड्थ गलत इस्तेमाल करते हैं काफी लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। तो अच्छा, तो एक खराबी होती है अकल की खराबी, और दूसरी खराबी होती है दिल की खराबी, और दिल चूंकि नीयत का मुकाम है तो इस वजह से दिल की खराबी मीन्स नीयत खराब, ठीक है। तो इस वजह से जो कातिब होता है ना, कातिब, तो कातिब पर ट्रस्ट किया जाता है इस वजह से कि वो अकल भी उसकी सही है और नीयत भी उसकी सही है, लेकिन ट्रस्ट करने वाला जो है ये भी कोई दिलों का भेद ही नहीं होता, ठीक है, कुछ बसीरत होती है उसके पास, अगर नेक आदमी है, अगर बहुत अच्छा है तो बसीरत होती है थोड़ी, उसके पास जो है वो कश्फ भी थोड़ा बहुत हो जाता है ना, लेकिन 100% पता नहीं होता, तो इस वजह से कभी गलती हो जाती है ना, तो फिर बहुत ज्यादा दुख होता है जब ऐसा शख्स जो है वो धोखा देता है, जिसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट किया गया था वो धोखा देता है, तो बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है आप बता दें, फिर उसके बाद क्या होता है, किसने सबसे बड़ी चीज के लिए, किस सबसे बड़े ने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया और जब उसने धोखा दिया तो फिर उसके साथ क्या किया गया, याद है? थोड़ा सा एक और क्विज, किस सबसे बड़े ने किस सबसे बड़ी चीज के लिए ट्रस्ट किया था और उसने भी धोखा दे दिया था तो फिर क्या किया गया था, ठीक है ना? चलें, वक्त इतना नहीं है हमारे पास, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों के ऊपर अपने यानी अल्लाह के कलाम की किताबत के लिए ट्रस्ट किया था, उनमें से एक दो ऐसे थे, दो दो का तो सीरत के अंदर हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि दो ने जो है ना वो इस ट्रस्ट को वायलेट कर दिया, ठीक है ना? तो उस उनके लिए जो है वो फतह मक्का के वक्त जबकि आम माफी का ऐलान हो गया था, तो उनमें से एक जो थे ना वो मक्का मुकरमा में मौजूद थे, उनके लिए हुक्म दे दिया था, ये जहां भी मिले इसको कत्ल कर दो, जहां भी मिले इसको कत्ल कर दो, ठीक है ना? लेकिन उनके लिए अल्लाह ताला ने हिदायत का फैसला किया हुआ था अपने पास, उन्होंने बिलाखिर उन्होंने तौबा कर ली नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के, नबी अलैहिस्सलाम तैयार नहीं थे उनकी तौबा कबूल करने के लिए भी, यानी उनकी तौबा कबूल तो खैर अल्लाह ताला ने करनी होती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उनके ईमान जो है ना वो उस वक्त इतना ज्यादा नाराज थे, इतना ज्यादा नाराज थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो जवाब नहीं दिया उनकी बात का, लेकिन बिलाखिर हो गया, मामला तय हो गया और फिर वो बहुत अच्छे मुसलमान बन गए, ठीक है? उसी तरह एक और ने इसी तरह से किया था और उसको तो फिर ईमान की तौफीक ही नहीं मिली थी, उसको फिर जो है ना वो कुफर के ऊपर ही मौत आई थी उस शख्स को, ठीक है? तो बहरहाल ये तो किताबत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई मामूली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है, तो हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और करना भी क्या था, फिकह को कंपाइल करना, ठीक है ना? और आप जानते हैं, ठीक है, कि उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा जो राइजुल वक्त फिका रही है वो हनफी फिका रही, हनफी फिका, ठीक है? और वो भी कहाँ पर, यानी जो नए मुसलमान होने वाले इरादे थे, ठीक है, और जिनकी पॉपुलेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अरबों की पॉपुलेशन तो बहुत कम होती थी ना, आज भी अरब जो है वो बहुत कम है, ठीक है ना? और अरब जो है वो तो पुराने मुसलमान, लेकिन जो नए मुसलमान होने वाले इलाके, इराक, ईरान, हिंदुस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, हत्ता के शाम का भी जो है वो आधा इलाका कम से कम हनफी, ठीक है? तो इतना बड़ा एरिया, तो ये फिक्र वहां पे जाकर के राइज होनी थी, तो कितनी बड़ी चीज थी, ठीक है? और यानी फिका होती क्या है, कुरान की समझ, हदीस मुबारका की समझ, इसी को तो फिका कहते हैं, तो ये कुरान मजीद और हदीस मुबारका से बढ़ करके तो नहीं है, लेकिन कुरान मजीद और हदीस मुबारका को समझने के लिए जो टूल है वो फिका का टूल है, तो कितनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी, अगर हमारे ये बात समझ में आ गई तब हम इस वाकये को समझ सकते हैं जो कि आगे बयान किया जा रहा है, ठीक है ना? कितनी सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी। तो फरमाते हैं कि जी बेटे की वफात पर भी सबक का नागा न किया, ठीक है? तो कहते हैं कि एक मरतबा जब ये सुबह सवेरे इमाम साहब की महफिल में आए तो थोड़ी देर के बाद इत्तला मिली कि घर में बीवी को दर्द महसूस हो रही है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, आपने अपनी बहन और रिश्तेदारों की तरफ इत्तला भेजी कि मेरी बीवी इस हाल में है, आप लोग जाएं और उसके लिए कुछ बंदोबस्त करें, ठीक है? उस जमाने में हस्पताल तो होते नहीं थे, अलबत्ता ऐसी औरतें होती थी जो आती थी और हामिला औरत की मदद करती थी, यानी जिसको दाई भी कहते हैं और जिसको जो है वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, मिडवाइफ, ठीक है? तो मिडवाइफ का सिस्टम वैसे आज भी मौजूद है और अमेरिका वगैरह के अंदर तो बड़ी प्रोफेशनल किस्म की मिडवाइफ जो है ना वो बाकायदा यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी आती हैं, ठीक है? तो मिडवाइफ का सिस्टम उस जमाने में सिर्फ यही सिस्टम था, हॉस्पिटल वाला सिस्टम था नहीं, तो ये उस जमाने में, अब ये लफ्ज उस जमाने में ना, ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट वर्ड है, क्योंकि आज के जमाने में आप इस किस्म की हरकत मत कीजिएगा कि ये किताब का वाकया पढ़ के, ठीक है ना। ये आज का जमाना है, ये वो जमाना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, हम पहले ही कर चुके हैं कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने जो है ना हनफी फिक को कंपाइल कर रहे थे। आप कर रहे हैं इस किस्म की कोई चीज? आप नहीं कर रहे। हम कर भी नहीं सकते कभी भी इस किस्म की, इसके करीब करीब भी कोई चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस ये वाकया जो है ना, ये बस अहमियत को बताने के लिए बताया जा रहा है, कोई हरकत ना करे इस किस्म की, ठीक है ना, जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने करी थी। उनके लिए जायज था, हमारे लिए जायज नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो कि किसी और के लिए जायज होती हैं, हमारे लिए जायज नहीं होती, या हमारे लिए जायज होती है, किसी और के लिए जायज नहीं होती, ठीक है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस दीन का, कि एब्सोल्यूट जवाज जो है ना, वो हर चीज के लिए नहीं होता। कुछ चीजों के लिए एब्सोल्यूट जवाज होता है, उनको कोई हराम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं किसी के लिए जायज, किसी के लिए ना जायज। जैसे चले रहने थे, अभी मिसाल तो आ रही है, लेकिन अभी तो इस जमाने में अस्पताल तो होते नहीं थे। अलबत्ता ऐसी औरतें होती थी जो आती थी और हामिला औरत की मदद करती थी। चुनाचे वो औरत आ गई, कुछ देर के बाद खबर आई कि आपके यहाँ बेटे की विलादत हुई है। आपने जब ये सुना तो खुशी का इजहार किया कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है। थोड़ी देर गुजरी तो फिर इत्तला आ गई कि बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आपने पैगाम भिजवाया कि मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाए। यानी सबक भी पढ़ रहे हैं, किताबत भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के साथ राजो न्याज जो है ना, जिसको दुआ कहते हैं, या जिसको अल्लाह ताला से माफी मांग रहे हैं, या मदद मांग रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ राजो न्याज के लिए जो है ना, वो कोई काम वाम नहीं छोड़ना पड़ता उसके लिए। कहीं मुसल्ला बिठा करके जरूरी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मुसल्ला बिठा करके आपने नमाज भी पढ़ ली, पर उसके बाद दुआ मांग रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसका, इसके लिए। तो साथ साथ जो है वो, मैं दुआ भी कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाए। थोड़ी देर बाद फिर इत्तला आई कि बच्चे की वफात हो गई। आपने अपने भाई को पैगाम भिजवा दिया कि आप जाएं और मेरे बच्चे को नहला के और कफना के यहाँ मस्जिद में तशरीफ ले आए, मैं भी जनाजे में शरीक हो जाऊंगा, क्योंकि मस्जिद में ही जो है वो क्लास होती थी। चुनाचे आपके बच्चे का जनाजा लाया गया और वहां उन्होंने शिरकत की। फिर इसके बाद कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जाना था, तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि आप मेरे ऊपर एहसान करें कि बच्चे को दफन करने की जिम्मेदारी भी आप ही लें। उनके भाई ने उनके बच्चे को कब्रिस्तान में जाके दफन किया। इस तरह आपने अपने उस्ताद की मजलिस में नागा नहीं होने दिया, ठीक है। तो अब जो है ना, वो असल मकसद जिस वजह से कि बयान किया गया था ये वाकया, वो इस मकसद से बयान किया गया था कि हजरत फरमाते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि आजकल के तुलबा तो मामूली बातों में बहाना करके सबक का नागा कर लेते हैं। ये बात समझाई जा रही है, ये नहीं समझाई जा रही कि कल को जो है ना, वो आपके यहाँ भी बेगम साहिबा के को तकलीफ हो या कोई भी इस किस्म का इशू हो, और आप कहेंगे मैं तो सबक छोड़ करके नहीं आता, ठीक है। ये हरगिज हरगिज नहीं समझाया जा रहा है, ना ये कहा जा रहा है, ठीक है जी। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। आगे फरमाते हैं तकरार की अहमियत। तकरार का जो लफ्ज है, ये उर्दू में इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, सिवाय इसके कि हाँ, अगर कोई किसी बात को बार बार रिपीट कर रहा हो तो उसके लिए तकरार तकरार लगाई भी है इसने, ठीक है। या मुकर्रर का लफ्ज जो है वो उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो तकरार का लफ्ज है ना, ये खास एक इस्तेलाही लफ्ज है जो कि इल्म के कॉन्टेक्स्ट से अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस्तलाही तौर पर, यानी एक बड़ा स्पेशल क्या कहते हैं, तो ये है सबक की रिपीटेशन, ठीक है। तो कहते हैं कि शागिर्द को चाहिए कि जिस तरह सबक की पाबंदी करें, इसी तरह अपने सबक का मुजाकरा तकरार भी करें, दोहराई जिसको कहते हैं, रिपीटेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ना। तो तकरार इंसान के इल्म को पुख्ता कर देती है। अल इल्मु यजीदु बित तकरार, इल्म तकरार से ज्यादा होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल ये क्लास सुन रहे हैं, बहुत सारे अभी ऐसे भी टॉपिक्स डिस्कस हो गए हैं जो कि किताब के अंदर नहीं लिखे हुए थे, ठीक है ना। इस वाकये की जो तौजीह बयान करी है, ये किताब में नहीं लिखी हुई है, आपने सुन ली, उम्मीद है कि आपके समझ में भी आ गई होगी, सही है। लेकिन क्या ये आपको याद भी रहेगी? जरूरी नहीं है कि याद रहे, बल्कि मोस्ट लाइकली नहीं याद रहेगी। तो अब करना ये चाहिए था कि जब ये बात बयान की जा रही है, तो उसको आप अपने पास हाशिए में लिख लेते, या अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेते, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, वो बाद में इसको एक नजर, कम से कम एक दफा देख लेते, ठीक है। तो तो एक दफा देख लेने से जो है ना वो बात याद हो जाती है, रह जाती है, और जो है ना फिर वो क्या कहते हैं, एक से ज्यादा दफा अगर देख लें तो और भी ज्यादा जो है वो पुख्ता हो जाएगी। ठीक है, एक तबलीग में लगे साहब ने ऐसा किया था कि जब बड़े बेटे के इंतकाल की इत्तला मिली तो बावजूद मुल्क में होने के जनाजे पर नहीं आए। जी अब पता नहीं उनकी क्या तफसील थी, लेकिन बहरहाल होंगे वो कोई फिनाफ तबलीग, फिनाफ तबलीग भी जैसे वो यूसुफ रहमतुल्लाह ने माशाल्लाह फिनाफ शेख थे और फिनाफ दर्स थे, तो वो होंगे फिनाफ तबलीग, और बाकी उनका क्या था मामला अल्लाह वाला। एनीवे हमने तो बात समझा दी, तो इसको सीधे ही रखे, अपने लिए रखे, दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया वो उनके हालात हैं, वो अल्लाह उनके दरमियान का मामला है। तो तकरार इंसान के इल्म को पुख्ता कर देती है। उम्मे दरदार रजी अल्लाह तआला अन्हा एक सहाबा थी, सहाबिया थी, औरतों ने एक मरतबा उनसे बहुत बहुत सारी बातें पूछी। आखिर में एक औरत ने उनको कह दिया कि हमने आपको बहुत तंग किया, आप तो थक गई होंगी और उकता गई होंगी। उम्मे दरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि दीन की बातें बताने के बाद तो मैं फ्रेश हो गई, तरोताजा हो गई। ठीक तो जिनको दीन से रग़बत होती है वो मुज़ाकरे और तकरार से मजीद फ्रेश तरोताजा हो जाते हैं। ठीक है, जिनको जिसको जिस चीज से भी रग़बत होती है ना वो उसके तकरार से फ्रेश हो जाता है। जैसे सबसे बड़ी मिसाल आम इंसानों में वो बेटे और माँ का ताल्लुक। ठीक है, तो हम बुजुर्ग भी इसके वाकयात बयान करते हैं और मिसालें देते हैं कि जी माँ को जो है ना वो बेटे के साथ खुसूसी मोहब्बत होती है, तो अब बेटे का जब भी जिक्र छेड़े तो माँ जो है वो एकदम तरोताजा, ऐसा जैसे कि सारी थकान उसकी उतर गई है, बेटे का जिक्र करना शुरू हो गई, बेटे की बातें करना शुरू हो गई। उसी तरह जिसको भी जिससे भी होती है, हमारे हजरत का एक बहुत प्यारा कौल है, बहुत ही प्यारा, हम तो जिंदा हैं तेरे के दुनिया में तेरा नाम रहे, हम तो तेरा नाम की रट लगाने के लिए दुनिया के अंदर जिंदा है। ठीक है, और क्या है, और भी इस तरह के छोटे छोटे मैसेज जो है ना वो अक्सर पढ़ते रहते हैं इस तरह की बातें। अल्लाह ताला से जिनको मोहब्बत होती है ना, अल्लाह का जिक्र छेड़ दो बस, उसके बाद फिर एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, तो जाहिर है फिर इल्म से या दीन से जिसको होती है मोहब्बत, तो फिर उस तकरार से भी उसको तरोताजगी मिलती है। तो तकरार जो है वो इल्म के लिए इंतहाई जरूरी है। पिछली दफा हमने आपको एक बात कही थी कि एक नुक्ता दिल में आया है तो वो जो है ना वो अगली दफा बयान करेंगे, तो वो कोई ऐसा इतना बड़ा चौड़ा सा कोई नुक्ता नहीं था, बस इतनी सी थी बात कि जो जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, चाहे वो कोई कॉलेज हो, वो यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, या कोई दीनी मदरसा हो, ठीक है, या कोई इवन प्रोफेशनल किस्म का कोई इंस्टीट्यूट हो, तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना तो वहां पर एक निजाम होता है, इसी वजह से वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगर निजाम ना हो तो इंस्टीट्यूशन तो कहलाएगा ही नहीं कोई। ठीक है ना, कॉलेज का एक निजाम है, स्कूल का एक निजाम है। तो अब जहां वहां पर जो है ना फिर ये जो तकरार का सिलसिला है ना उसको फिर वो इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स डू तकरार, स्टूडेंट्स जो है ना वो रिपीटेशन करें। अब उसके लिए जो अच्छे होंगे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज या वगैरह, तो वहां पर उन्होंने जो है ना बाकायदा एवरी डे तकरार का सिस्टम रखा हुआ होगा। ठीक है, जो बोर्डिंग खास तौर पर स्कूल्स होते हैं या मदरसे होते हैं, तो वहां पर बाकायदा शाम का एक घंटा होता है जी, वहां पर जो है ना वो जिस बच्चे को सबसे ज्यादा बात समझ में आती है वो तकरार ग्रुप का इंचार्ज होता है, और बाकी जो है ना वो तकरार उसके साथ मिलकर के करते हैं। तो इससे रोज रोज का सबक जो है ना वो पक्का हो जाता है। स्कूलों कॉलेजों के अंदर वैसे हमने कभी सुना तो नहीं इस किस्म का, लेकिन वो लोग यानी इंडिविजुअली जिसको ज्यादा शौक होता है, या कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए, अगर उनको ज्यादा शौक है बात को समझने का, याद रखने का, तो फिर वो इस किस्म को सेटअप कर लेते होंगे, वरना हमने कभी सुना नहीं है, हमने भी इस तरह का नहीं किया। लेकिन स्कूलों कॉलेजों वगैरह के अंदर फिर वो जो है ना वो तकरार किस तरह से करवाते हैं, वो फिर हर थोड़े दिन के बाद कोई कोई टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, फिर जो है ना वो यानी एग्जाम्स हो रहे हैं, और जो है वो प्रिलिमिनरीज हो रहे हैं, और मॉक एग्जाम्स हो रहे हैं, और फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो बेसिकली पुश कर रहे होते हैं कि आप चीजों को दोहराते रहें। अगर ये सिस्टम ना हो तो फिर दोहराई करने की किसके किसके पास टाइम है भाई दोहराई करने का, है हजार और चीजें आ जाती हैं, टीवी भी देखनी है, मैच भी खेलना है, पता नहीं और भी दोस्तों के साथ भी घूमना फिरना है, और खाना पीना भी खाना है, और ये भी करना है वो भी करना है, सर हजार चीजें आ जाती हैं इंसान के ऊपर। तो इस तरीके से वो एनफोर्स करते हैं इंस्टीट्यूशन वाले, ठीक है। तो जिस जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होगा तो वहां पर तो ये सिस्टम होगा, लेकिन अगर कहीं पे एजुकेशन का सिस्टम तो है लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम नहीं है, प्रॉपर सेटअप नहीं है, प्रॉपर एग्जामिनेशन और यानी स्टूडेंट्स को जो है वो क्या कहते हैं उसको एनालाइज करने का या एसेस करने का ये प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो फिर वहां पर क्या किया जाए, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर तीन एसेंशियल्स फॉर मेन, राइट, जिसमें अभी आप बैठे हुए हैं, या दीन एसेंशियल्स फॉर वुमेन जिसके अंदर जो है वो खवातीन सुबह को बैठी हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास ना तो हमें ये पता है कि कौन बैठा हुआ है, कौन सुन रहा है, कौन सुन नहीं रहा है ना, हमने कोई वीडियो का भी सिलसिला नहीं रखा हुआ कि आपकी शक्लें देखें, कौन तवज्जो दे रहा है कौन तवज्जो नहीं दे रहा, ठीक है ना। हमने जो है वो कोई क्विज का सिलसिला प्रॉपर रखा हुआ है ना, हमने जो है वो कोई एग्जाम का सिलसिला, ना असाइनमेंट का सिलसिला, ना जो है वो मार्किंग ग्रेडिंग, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। तो अब कैसे पढ़ाया जाए, अब कैसे इल्म जो है ना वो ट्रांसफर किया जाए, तो उसका तरीका ये होगा कि भाई स्टूडेंट्स का तो कुछ पता नहीं, ना उनके ऊपर कोई सोर्ड लटकी हुई है, ना कोई डंडा है हमारे पास, ना कोई और तरीका है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही हल रह जाता है कि जो पढ़ाने वाला है ना वो तकरार करे, पढ़ाने वाला या पढ़ाने वाली जो भी है वो तकरार करें, यानी वो बार बार बात को रिपीट करें, बार बार दोहराएं और मुख्तलिफ बहानों से दोहराएं, ठीक है। किसी एक तरीके से दोहराएं तो फिर अगली दफा जो है वो किसी दूसरे तरीके से दोहराएं, तरीके से दोहराने का मतलब ये नहीं है कि कोई पहले जो है वो रो करके दोहराएं, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो गा करके दोहराएं, और तीसरी दफा जो है ना वो कुछ यानी अजीबो गरीब तरीके से कोई दोहराना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के साथ दोहराएं, मुख्तलिफ बहानों से दोहराएं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना फिर इस किस्म के नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड के अंदर फिर बात पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। इसके लिए दोहराई की जरूरत होती है। और फिर हमने जब खवातीन की क्लास के अंदर ये वाला नुक्ता बयान किया तो फिर हमने एक ये भी सवाल किया था कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल कहाँ मिलती है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें कहाँ मिलती है। तो माशाल्लाह खवातीन ने तो सही जवाब दे दिया था, हो सकता है वो भी यहाँ क्लास में मौजूद हो, तो वो उनसे तो गुजारिश है कि वो खामोश रहे, ये तो चीटिंग हो गई ना, चले रहने, ठीक है। तो सबसे बड़ी मिसाल जो है ना वो कुरान मजीद, कुरान अजीम, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जैसे अभी खवातीन में जो बनी इसराइल की आयात चल रही है, फरमाते हैं वलकद सरफना फी हादल कुरान, फी हादल कुरान लियज़क्कर, है ना, तहकीक के हम फेर फेर करके समझाते हैं इस कुरान के अंदर ताकि वो सोचें, ताकि वो समझें, ताकि वो याद रखें, लियज़क्करू, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने यही असलूब अपने बंदों के लिए पसंद फरमाया अपने कलाम के अंदर, बार बार रिपीटेशन, बार बार एक ही चीज की, लफ्जी रिपीटेशन भी होती है और मानवी रिपीटेशन भी होती है। लफ्जी रिपीटेशन में तो एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ला आबुदू मा ताबुदून वला अंतुम आबुदून मा आबुद, राइट, लफ्जी बाकायदा आयत भी रिपीट हो रही होती है, लेकिन कहीं पे आयत लफ्जों में रिपीट नहीं हो रही तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा होता है, यानी मानन रिपीटेशन हो रही होती है, ठीक है ना। अब इसका नतीजा भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा यजीदुहुम इल्ला नुफूरा, लेकिन जो है ना ये उन लोगों को यानी काफिरों का तذکرہ करते हुए फरमाते हैं कि ये जो हमारा बार बार का दोहराना है ना, ये उन लोगों को जो है ना वो नफरत में बढ़ा देता है, नहीं बढ़ाता सिवाय नफरत के अंदर, ठीक है। तो जो नहीं मानने वाले होते हैं ना उनको ये तकरार बहुत बुरी लगती है, उनको रिपीटेशन बहुत बुरी लगती है, उनको फेर फेर करके बयान करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो मानने वाले होते हैं उनके साथ वो होता है जो हजरत ने यहाँ पे कॉपी कर दिया हाफिज साहब ने, वदक्किर फइन्न ज़िक्रा तनफउल मोमिनीन, ठीक है। जो मानने वाले होते हैं उनको तो फायदा ही होता है दोहराने से, लेकिन हर बंदा मानने वाला नहीं होता, तो जो नहीं मानने वाले होते हैं ना वो नफरत में बढ़ जाते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि नफरत में तो वो बढ़ते हैं लेकिन समझ में आने वाला फायदा उनको भी हो जाता है, तकरार से बात उनको भी समझ में आ जाती है, ठीक ठीक है ना। ये नहीं है कि जो जो मानने वाले नहीं होते और नफरत में जो है वो बढ़ जाते हैं तो उनको बात समझ में नहीं आ रही होती, नहीं, बात तो उनको भी समझ में आ जाती है, लेकिन चूंकि उनका बोझ होता है, अनानियत होती है, जिद होती है, ठीक है ना, या कोई और इस किस्म का नीयत की खराबी होती है, तो इस वजह से नफरत बढ़ती है उनके अंदर। लेकिन मानने वालों में नफरत नहीं बढ़ती, बल्कि मानने वालों के अंदर फायदा बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है और अमल की तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से उनको अता होती है। ठीक है, तो ये तकरार के जमन में चंद बातें जमन में आई हुई थी, आपके सामने रख दें। हमारा काम है तकरार का, ठीक है, या तो तकरार का इंतजाम करें कि स्टूडेंट जो है वो खुद से तकरार करने पर मजबूर हो, या अगर वो खुद से मजबूर नहीं हो रहा है तो फिर टीचर ही कम से कम तकरार करता रहे। अच्छा, किताबों का अदब और एहतराम अगला मौजू है इसमें। तो सो इफ समवन इज फीलिंग एजिटेटेड विद रिपिटिशन देन इट इज अ साइन दैट वन इज नॉट फ्रॉम द मानने वाले। देखें, एग्जैक्टली ये मैथमेटिकल जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मैथमेटिकल हो कि हाँ भाई अगर वो एजिटेशन की वजह से जो है वो सॉरी रिपिटेशन की वजह से वो एजिटेटेड फील कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मानने वाला नहीं है। हाँ, इन अ वे आप ये कह भी सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप भी माशाल्लाह पीर जुल्फकार है व नक्शबंदी दामा मिल्लतों को जानते हैं, है ना, उनके पास बैठे हैं, उनकी बातें सुनी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह साजिद ने भी बहुत सुनी है। हजरत की बातों में कितना रिपीटेशन होता है, बे इंतहा रिपीटेशन। बहुत कम दफा जो है ना वो कोई नई बात कर रहे हो, लेकिन आपने कितनी दफा एजिटेटेड फील किया, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कभी भी नहीं फील किया। हालांकि रिपीटेशन आफ्टर रिपीटेशन नई बातें तो यानी कभी कभार कुछ सुनने को मिलती है, कभी एजिटेटेड फील नहीं किया, ठीक है ना। उसी तरीके से उससे बड़ी मिसाल ले लें सूरह फातिहा, राइट, सूरह फातिहा कितनी दफा रिपीट करते हैं एक दिन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान वाले होते हैं वो एक दफा भी एजिटेटेड फील नहीं करते, ये क्या है यार, हर दफा एक ही बात, एक ही सात आयात जो है वो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसको तकलीफ हो रही होती है ना तो उसका मोस्ट लाइकली तो यही केस हो रहा होता है कि वो जो है ना वो मानने वाला नहीं होता। अलबत्ता कभी रिपीटेशन करने वाला जो है वो उसकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि वो कोई ऐसी बात रिपीट कर रहा है, जैसे कि मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल कहाँ पे मिलेगी, ये भी चले मजे मजे की बात है, आप बताएं कि जिसमें जो तकरार करने वाला होता है ना तो उसका प्रॉब्लम होता है ज्यादा, जिसकी वजह से लोग एजिटेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो ज्यादा मिसाल होती है ना ये ज्यादातर ये घरों के अंदर, ठीक है, ये ज्यादातर घरों के अंदर होती है जी। वो या तो वाइफ बेगम साहिबा, ठीक है, लगता है बेगम साहिबा साथ ही बैठी हुई यहाँ पे, तो या तो बेगम साहिबा या जो है वो बेगम साहिबा के अपने लिए उनकी सास साहिबा, ठीक है, तो सास साहिबा जो है ना उनकी तकरार जो है वो बहू साहिबा को अच्छी नहीं लग रही होती, ठीक है। तो बहरहाल कौन से वाइफ भी या तो मानने वाली नहीं होती, या मानने वाली होती भी है तो फिर भी वाइफ और शौहर का यानी मियाँ बीवी का ताल्लुक जरा सा औखे किस्म का ताल्लुक होता है, लेकिन बहू और सास वाला ताल्लुक तो फिर वो मानने ना मानने वाला मसला आ जाता है ना। तो फिर वो जाहिर है सास की बात अच्छी भी नहीं लगती, और फिर सास की अपनी भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं कि भाई उनको ऐसे तकरार नहीं करनी चाहिए थी, और अगर वो सीख के करती हैं और तरीके से करती तो बहू को बुरा ना लग रहा होता, वो सारी फिर वो पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन जहां पर अकीदे का ताल्लुक हो, अकीदत का ताल्लुक हो, मोहब्बत का ताल्लुक हो, हिदायत का ताल्लुक हो, इल्म का ताल्लुक हो, तो वहां पर मानने और ना मानने वाली जो है ना बात डेफिनेटली रोल प्ले कर रही होती है, बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो अच्छा, अगला टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, टाइम खत्म होने वाला है। किताबों का अदब और एहतराम, किताबों का अदब और एहतराम भी बहुत जरूरी है, खास तौर पर दीनी किताबों का बहुत ज्यादा एहतराम करना चाहिए। एक मरतबा मुफ्ती किफायतुल्ला रहमतुल्ला अलैह जो मुफ्ती हिंद कहलाते थे, उन्होंने अपने शागिर्दों से पूछा कि बताओ अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्ला अलैह, अनवर शाह कश्मीरी कैसे बने, यानी इतने बड़े आलिम और इतने मशहूर और मोतबर आलिम जो है वो कैसे बने। जिस शागिर्द को कुरान पाक का जौक था तो उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे मुफस्सिर थे, जिसको हदीस का जौक था तो उसने कहा कि बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इस वजह से इतने बड़े मशहूर आलिम बन गए। जिसको अशार के साथ जौक था उसने कहा कि उनका कलाम बहुत आला था, बड़े अच्छे शेर कहते थे। गर्ज हर एक ने अपना अपना जवाब दिया। अखीर में हजरत मुफ्ती किफायतुल्ला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि एक मरतबा यही सवाल अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने पूछा गया था, हजरत आप अनवर शाह कश्मीरी कैसे बने। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह जो है वो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जो चीदा चीदा तुलबात है ना, उनमें से एक, जैसे हजरत थानवी रहमतुल्लाह, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। यानी हर तालिब इल्म जो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का था ना, वो यानी एक जिबाले इल्म, और बल्कि जिबाले जिबाले इल्म भी नहीं, जिस फील्ड में गया उस फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना वो यानी छा गया जा करके। तो हजरत कश्मीरी भी उन्हीं में से एक थे। तो हजरत रहमतुल्लाह ने खुद जवाब दिया था कि मैं किताबों के एहतराम की वजह से इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। तो कहा गया कि किताबों का एहतराम तो हर बंदा करता है, कम अज कम मदारिस के उस जमाने के तुलबा तो सारे करते थे। तो फरमाने लगे कि नहीं, मैंने दीनी किताबों को कभी बेवजू हाथ नहीं लगाया, और दूसरी बात ये कि जब किताबों को रखना होता था तो मैं उसमें भी ऊंचे दर्जे वाली किताब को ऊपर रखता था और दूसरी को नीचे रखता था। चुनाचे मैंने कभी कुरान पाक के ऊपर हदीस की किताब को नहीं रखा, हदीस पाक की किताब के ऊपर फिका की किताब को नहीं रखा, और फिका की किताब के ऊपर तारीख की किताब को नहीं रखा। ठीक है, कैसे कैसे दर्जे है ना, तारीख जो है वो सबसे यानी इन के मुकाबले में सबसे कम तरजीह है। बेशक वो इस्लामी तारीख, लेकिन इस्लामी तारीख भी जो है ना वो हदीस का मुकाबला नहीं कर सकती। इसी वजह से सहाबा कराम को परखना हो तो तारीख की किताबों को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फौल फौल किस्म की चीजें जो है वो बादशाहों ने और शियाओं ने और पता नहीं किस किस ने जो है वो अंदर मिक्स करी हुई है, हमें पता भी नहीं चलता। तारीख की किताबों का तो ये हाल है, ठीक है। हदीस के अंदर वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हदीस की हिफाजत का ताल्लुक खास कुरान मजीद की हिफाजत के साथ है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ठीक है ना। तो वो कुरान मजीद की हिफाजत कैसे होती है, कुरान मजीद की हिफाजत हदीस के जरिए से होती है, ठीक है। हदीस के जरिए कुरान मजीद की हिफाजत होती है, सिर्फ मीनिंग की हिफाजत नहीं। एक तो होता ना कि हदीस से जो है कुरान मजीद की मीनिंग नहीं, कुरान मजीद के अल्फाज भी तो हदीस हैं। अल्फाज कुरान कहां से आए, सहाबा कराम ने नबी अलैहिस्सलाम से सुन के आके बयान फरमाए, वो भी तो हदीस है, हदीस से मुतवातिर कुरान मजीद के अल्फाज हैं, ठीक है। तो इस वजह से हदीस और तारीख जो है ना, हदीस ऊपर रहेगी, और हदीस के ऊपर जाहिर है अल्लाह ताला का कलाम ऊपर रहेगा। किताबों को रद्दे के बारे में, हाँ ये अलहमदुल्ला हमारे में शायख ने हमें ये बात सिखाई है, तो जब आप लोगों को पढ़ाया था तो हमने ये बात आपके सामने पहले भी रखी थी। बा अदब बा नसीब जो हमारे हजरत की किताब है, उसके अंदर यानी मुतअल्लिम के जो आदाब हैं उसके अंदर ये सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई। बहरहाल तो फरमाते हैं किताबों के इस अदब की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इल्म में ऐसा रसूख अता फरमा दिया। बल्कि यहाँ पे तो हजरत ने पूरी बात बयान नहीं फरमाई, एक और जगह गालिबन बादा बा नसीब नसीब के अंदर ही ये मजीद लिखा हुआ है कि हजरत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना फरमाते थे कि मैं किताब को अपने ताबे नहीं करता था, मैं खुद किताब के ताबे रहता था। मतलब ये कि जैसे मुझे जो है ना वो, अब किताब हमारे सामने खुली हुई है ना, तो हम इधर बैठे हुए किताब, ठीक है। अब किताब के ऊपर ना पुराने जमाने में खास तौर पर हाशिए लिखे होते थे, अभी भी आप हिदायत शरीफ उठा लें जो भी पुरानी, तो उसमें जो हाशिए होते हैं यानी जो 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 साइड में लाइंस होती हैं, क्या कहते हैं उसको, मार्जिन्स, तो वो तशरीह लिखने वाले जो है ना वो साइड में लिखते थे, और वो यानी दूसरे एंगल के साथ लिखते थे। तो अब जो है वो हाशिया पढ़ना है, तो हाशिया पढ़ने के लिए क्या करना होगा आपको, उसको सीधा करना होगा, किताब को घुमाना पड़ेगा ना, तब वो हाशिया आपके सामने सीधा होगा, तब आप उसको पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। कहते थे कि मैं किताब को नहीं घुमाता था, मैं खुद घूमता था राइट, इधर हाशिया है मैं उधर जाकर के बैठता था, फिर अगर और घूमना पड़ता था मैं खुद घूमता था, मैं किताब को नहीं घुमाता। ये किताब की बेअदबी है कि किताब को घुमा रहे हैं आप, यानी अपने ताबे कर रहे हैं किताब को, नहीं आप क्यों नहीं ताबे हो रहे किताब के। खैर ये एक बड़ी एक्सेप्शन किस्म की उनकी कैफियत थी, तो अब करते थे भाई, इतना ज्यादा करते थे, वरना ऊपर नीचे वाला मामला तो अलहमदुल्ला बहुत सारे और लोग भी कर लेते हैं। और ये खास तौर पे ना ये चीजें जो है ये बच्चों को माँ बाप को सिखानी चाहिए, ठीक है। बच्चों को अगर शुरू में सिखा दिया जाए तो फिर वो भी इस चीज का ख्याल रख लेते हैं। शम्सुल अइमा हलवारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि पूरी जिंदगी में मैंने कभी भी किसी किताब को बिला वजू नहीं छुआ। इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा गैस की तकलीफ थी, तो बार बार वजू करना पड़ रहा था, तो उस दिन उन्होंने 17 मरतबा वजू किया, मगर किताब को बेवजू हाथ लगाना गवारा नहीं किया, ठीक है। तो कुरान मजीद को बेवजू अलहमदुल्ला हाथ नहीं लगाते, लेकिन ऐसे लोग हैं ना, वो दीन की दूसरी किताबों को भी बेवजह बातें करते थे। बेअदबी ने हिदायत से महरूम कर दिया। शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह के पास उनके शागिर्द बैठे थे, उन्होंने अपने सामने किताबें खोल के रखी हुई थी। अचानक तेज हवा चली जिसकी वजह से किताब के सफ़े उलटने लगे, तो शाह साहब ने बच्चों से कहा कि किताब के सफ़े पे हाथ रख दो। तो सब शागिर्दों ने किताब के सफ़े पे हाथ रख दिया। एक ऐसा शागिर्द था जो जरा पीछे हटके बैठा हुआ था, तो उसने किताब के सफ़े के ऊपर अपना पाँव रख दिया। कहते हैं कि जिस शागिर्द ने किताब के ऊपर अपना पांव रखा था, बिलाखिर वो मुर्तद हो गया और दीन इस्लाम से ही महरूम। ठीक है, तो जाहिर है फिर स्टैंडर्ड्स भी जो है वो हाई होते हैं, और इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई होती है ना, तो फिर उसकी नाकदबी या उसके साथ बेअदबी वाला जो मामला होता है ना, फिर अल्लाह ताला सजा भी उतनी बड़ी दे देते हैं। अब जाहिर है यानी मुर्तद होने वाली सजा तो सबसे बड़ी सजा है ना, ईमान से महरूम कर दिया हमेशा हमेशा की जहन्नम। तो एक यानी इंसिडेंटल किस्म के वाकये के ऊपर इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती, ठीक है ना, कि बस जो है ना वो एक छेड़खानी शरारत में जो है वो बच्चे ने हरकत कर दी, बस जो है वो तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम का ईंधन। नहीं, अल्लाह ताला ऐसे नहीं है, अल्लाह ताला ऐसे नहीं है कि बच्चे की शरारत के ऊपर उसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो एक तो वाकयात भी ऐसे होते हैं कि 100% जो है वो इनकी भी ऑथेंटिसिटी पता नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी था, क्योंकि ये कोई कुरान हदीस तो है नहीं, ठीक है ना, कि इस किस्म के वाक्य आप 100% जो है वो कंफर्म है। लेकिन अगर ऐसा मामला होता भी है ना, तो उसको भी लाजमी है कि हम ऐसे समझें कि इतनी सी बात नहीं थी, बात इससे ज्यादा बड़ी थी। ठीक है ना, तो ये जो लड़का होगा इसने जो है ना वो बेअदबी का मामला यानी बहुत ज्यादा कोई ऐसी हरकत करी होगी, या इसके दिल के अंदर इस किस्म की कैफियात चल रही होंगी, ऐसी बातें इसके दिमाग में चल रही होंगी कि गोया के जो होता है ना, वही पहले जो बात हुई थी यानी स्कूलों वगैरह में कहा जाता है क्लास क्लाउन, यानी टीचर का मजाक उड़ाना है, टीचर के साथ बदतमीजी करनी है, टीचर की बेअदबी करनी है, और ये करना है ना। तो अब ये जो एटीट्यूड होता है ना दीन के मामले के अंदर, ये यानी बहुत ज्यादा बड़ा ऑफेंस बन जाता है, बहुत बड़ा ऑफेंस बन जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी सजा किसी को मिलती है तो फिर वो बड़े ऑफेंस के ऊपर ही बड़ी सजा मिलती है। तो इससे मालूम होता है कि दीनी किताबों की नाकदरी की वजह से इंसान हिदायत से ही महरूम हो जाता है। अगर किताब पकड़ानी पड़े तो दीनी किताब फेंक के नहीं देनी चाहिए, बल्कि दूसरे बंदे के हाथ में पकड़ानी चाहिए। ठीक है, बच्चों को तो बल्कि ये सिखाना चाहिए कि बॉल के अलावा आपने कोई चीज फेंक करके नहीं देनी है। ठीक है ना, बॉल है वो फेंकने की चीज है, ठीक है ना, उसको बनाइए खेलने के लिए बनाया गया, फुटबॉल हो या क्रिकेट की बॉल हो या बेसबॉल की बॉल हो, जो भी बॉल हो भाई, उसको तो खेलने आपने कैच 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 ही करना है उसके साथ, ठीक है ना, उसके अलावा तो कोई भी चीज फेंक करके नहीं देनी है। ठीक है ना, बच्चे अगर कभी कभी इवन दस्तखान पे बैठे होते हैं या डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, तो जी उधर से कोई चीज किसी ने मांग, ये तो फेंक करके दे दी, या जो है उसको जोर से स्लाइड कर दिया, नहीं, फौरन बच्चे की इसलाह होनी चाहिए। डांट डपट मारपीट करने को हरगिज नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसे जो अफाल होते हैं ना, उनको इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, बल्कि फौरन इसलाह करनी चाहिए, बेटा ऐसे नहीं, ऐसी ऐसी चीज नहीं पकड़ाते, ऐसी चीज नहीं देते। ठीक है, तो फेंक करके कोई भी चीज नहीं देनी है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सीधे हाथ से देना, ठीक है ना, सीधे हाथ से पकड़ाना और सीधे हाथ से पकड़ना सबसे बेहतरीन आदाब तो यही है। ठीक है, अब बच्चों की होता है कि कुछ बच्चे तो होते ही लेफ्टी हैं, तो चूंकि उनका पावर उनकी पावर ज्यादातर लेफ्ट हैंड के अंदर होती है, तो वो ऑटोमेटिकली उनका लेफ्ट हैंड बढ़ रहा होता है, इवन खाने पीने के लिए भी उनका उल्टा हाथ ही आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन ये ऐसा मामला है कि इसके अंदर अगर वालदैन इसलाह करते रहें अच्छे से इसलाह करते रहें, ठीक है, तो बच्चा जो है ना, इवन लेफ्टी बच्चा भी जो है वो राइट हैंड से ये वाले काम करना शुरू हो जाता है, क्योंकि खाना खाने में ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, और चीज पकड़ाने में ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है। तो एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन जो है वो आसानी से राइट हैंड से ये काम कर सकता है, लेकिन जिन चीजों में ज्यादा पावर की जरूरत होती है ना, वो नहीं कर सकेगा, और उसको फोर्स भी करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली राइटिंग, लिखने का अमल जो है ना, इसमें अच्छी खासी ताकत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस बच्चों को आप ये मत कहेंगे नहीं तुमने राइट हैंड से लिखना है, नहीं, ये इतना ना करें, वो नहीं कर सकेगा, और खामखा जो है ना वो फ्रस्ट्रेट होता रहेगा और मामला खराब हो जाएगा, उसमें नहीं करें। लेकिन खाना खाने में और चीज पकड़ाने में इसमें पावर की जरूरत नहीं होती, ये बस अच्छे से इसलाह करते रहे, याद दहानी कराते रहे, बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, तो उसकी नीयत शुरू से सही ना हो जिसकी वजह से अमल सादिर हुआ। हाँ हो सकता है ना, नीयत ही खराब है कि मैंने तो उस उस्ताद का मजाक ही उड़ाना है और मैंने तो बस काम खराब ही करना है और सबक को जो है वो स्पॉइल करना है, इस किस्म की अगर नीयतें हो तो फिर उसके ऊपर जाहिर है बड़ी सजा मिल जाती है। अच्छा आगे फरमाते हैं कि बाज़ बच्चे किताबों के ऊपर ना यानी बातें लिख देते हैं या तस्वीरें और ड्राइंग वगैरह बना देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नीज किताबों को अपने ताबे ना करें बल्कि खुद अपने आप को किताबों के ताबे किया करें। तो हजरत गालिबन जो है ना वो वाकया जो है ना, हजरत को तो पता है वो वाकया दूसरे लोगों को बयान किया है, तो वो वाकया यहाँ पे नहीं बयान किया था, तो एक बस जुमले के अंदर उसको गोया के कवर कर दिया कि किताबों को अपने ताबे ना करें, खुद को किताबों के ताबे करें। बाकी ये कि लायानी बातें कहने से मना कर, लिखने से मना कर रहे हैं और ड्राइंग्स और तस्वीरें फजूल की वो बनाने से मना कर रहे हैं, नोट्स लिखने से मना नहीं कर रहे हैं। किताब के ऊपर नोट्स लिखने से, लेक्चर नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उससे मना नहीं कर रहे। बात या जिस बहुत शुरू से जो है वो समझाता रहा है कि कुछ लोग जो है ना वो किताब के अदब में जो है ना वो कुछ उसमें भी दाखिल हो, यानी किताब पे कुछ भी नहीं लिखता और जिसने लिख दिया वो जो है ना वो बेअदब हो गया, बदतमीज हो गया। भाई हमारे अकाबरीन सारे के सारे किताब के ऊपर लिखते रहे हैं, हम अपना अदब किससे सीख रहे हैं, अपनी अकल से सीख रहे हैं या अपने अकाबरीन से अदब सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई नोट्स ना लिखना ये बेअदबी है किताब की, ठीक है ना, ये बेअदबी है किताब की। और अमूमन जो नोटबुक्स होती है ना, कॉपियां होती हैं, तो कॉपी हर दफा आप साथ रख भी नहीं सकते हैं, और कितना किताब भी संभाल रहे हैं कॉपी भी संभाल रहे हैं, दोनों चीजें साथ रहे हैं, तो भाई अगर कॉपी का सिलसिला नहीं है, किताब के अंदर जगह है तो वहां पर नोट्स लिखने, मसला मकसद जो है ना किताब का अदब जो है वो इल्म से अदा होगा। अगर आप इल्म के बारे में संजीदा नहीं है तो आप कितने ही खूबसूरत बना करके किताब को रखें और अच्छी अच्छी सी बाइंडिंग करवा लें, जैसे हम स्कूलों में ना सबसे पहले जो है वो क्या होता था कि जी किताब के जो है ना वो अच्छा सा उसके ऊपर कवर चढ़ाना है और उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाना है, और है ना ये इसमें बड़ा बड़ा फोकस होता था, इस चीज के ऊपर किताब की खूबसूरती के ऊपर बड़ा फोकस होता था, ठीक है ना। तो इल्म का फिर वो आप अशर देख लें, किताब की खूबसूरती बस फोकस है, बाकी इल्म के ऊपर फोकस नहीं है तो फिर क्या होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम आज की क्लास खत्म करते हैं, कोई अगर सवाल वगैरह है तो पूछ सकते हैं, वरना यहाँ पे अगली क्लास में जाकर आगे इंशाल्लाह इसलिए भी करते थे कि वो किताब आगे बेच दी जाए। हाँ ये भी एक फायदा होता था, लेकिन वो तो बच्चे को तो नहीं इतना इतनी परवाह होती, शायद वालदैन को ज्यादा इसकी परवाह होती है कि वो आगे भी बेचनी है, तो किताब को बहुत अच्छे से संभाल करके रखो वरना अच्छे दाम नहीं लगेंगे। अब ये और बात है कि लाइब्रेरी से इशू करना, ठीक है, तो जैसे अमेरिका वगैरह में तो बच्चे जो है ना वो खरीदते ही नहीं है, बल्कि लाइब्रेरी से ही स्कूल की जो है ना वो बच्चों को इशू हो जाती है, तो वो जो लाइब्रेरी से आपने लिए तो वो एक अमानत है, उसके ऊपर आप अपने नोट्स नहीं लिख सकते किसी दूसरे के, या आपने किसी से बोरो करिए कि जी मैं आपको पढ़ के वापस कर दूंगा, अब बोरोड किताब जो है किसी वो उसके ऊपर आप अपने नोट्स मत नहीं बना सकते। हम अपनी जाती किताब की बात करें कि उसके ऊपर आप नोट्स बनाए, अनलेस कि आपने उसके साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ कि हाँ भाई मैं नोट्स बना दूंगा, वो भी इसके लिए तैयार है, तो फिर ठीक है, उसका भी फायदा हो जाएगा कि आपके नोट्स हैं वो पढ़ लेगा तो उसको बाद में फायदा हो जाएगा। ठीक है चले, आप क्लास होते हैं, आपको दावाना अलहमदुल्ला।